नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। पड़ोस की ट्यूशन आंटी या मैथ्स के सर, हम में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में प्राइवेट ट्यूशन्स लिए होंगे, और यही अप्रोच भारतीय समुदाय के बहुत से लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद अपने बच्चों के लिए जारी रखी है। मेलबर्न में रह रही रीत फुलवानी बताती हैं कि वो अपने बच्चों को निजी कोचिंग देना जरूरी समझती हैं, लेकिन उन्हें सही ट्यूटर का चयन करने में दिक्कतें आती हैं।
आई थिंक ये सारे पेरेंट्स की बिल्कुल सेम सिचुएशन है। ये काफी डिफिकल्ट है प्राइवेट ट्यूशंस फाइंड करना, बिकॉज इसमें कोई हेल्प नहीं है, कोई परफेक्ट वेबसाइट नहीं मिलता, तो ये जस्ट हैव टू गो कि जो मिलता है हमें प्राइवेट ट्यूशंस ट्राई करने पड़ते हैं बच्चों के लिए। और साथ ही साथ ये काफी एक्सपेंसिव पड़ता है पेरेंट्स को कि जो हम स्कूल फीस भर रहे हैं उसके ऊपर से ये एक्स्ट्रा ट्यूशंस दिलवाना बच्चों को, बिकॉज बिजी लाइफ है पेरेंट्स की, और उसके साथ साथ हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी ग्रेड से पास हों, तो हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारे बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प मिले आउटसाइड स्कूल। तब अगर आप देखो तो यहाँ पे भी कोई फीस का एक्चुअली काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बिकॉज एवरेज मैं अपने बच्चों के ऊपर 5,000 ऑन टॉप ऑफ दैट साल की फीस भर रही हूँ स्कूल की,
जी
और इसलिए मैं चाहूंगी कि आगे चल के अगर ये रेगुलेटेड फील्ड बन जाए जहाँ पे स्कूल हमें ऑफर करे ऐसा एक्स्ट्रा सपोर्ट, जो पेरेंट्स के लिए ऑप्शंस बन जाए और उनको अच्छी गाइडेंस मिले कि कौन से ट्यूशन अवेलेबल हैं और ट्यूटर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हायर ग्रेड में तो बच्चों को चाहिए ही है, लेकिन इवन जो जूनियर ग्रेड्स में है उनको भी हेल्प चाहिए होती है कई बार। तो मैं चाहूंगी कि आई मीन एज अ पेरेंट कि स्कूल्स हमें ऑफर हेल्प करें, और इसलिए इसको थोड़ा स्ट्रक्चर दिया जाए, रेगुलेटेड किया जाए कि अच्छे ट्यूटर्स अवेलेबल हों सारे पेरेंट्स के लिए। आई थिंक प्राइमरी लेवल पे यस, आई से मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियंस एंड एशियंस ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने बच्चे के लिए देखा है एक्सपीरियंस करते हुए कि अब एक्चुअली सारे पेरेंट्स को ये चाहिए हेल्प आफ्टर ग्रेड, आई थिंक जब हाई स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है जूनियर लेवल तक तो इंडियंस ही यूज कर रहे हैं, बट सीनियर लेवल्स पे सारे बच्चे यूज कर रहे हैं प्राइवेट ट्यूटर्स, तो इसलिए आई थिंक इट्स अ ओवरऑल थिंग है जो सबको पेरेंट्स को चाहिए होता है आफ्टर ग्रेड 9 एंड 10।
अच्छा रीत, आपको उनके ग्रेड्स में किस प्रकार का सुधार नजर आता है प्राइवेट ट्यूशन से?
ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट तो है, बिकॉज वन ऑन वन है, या इवन जो उनकी ग्रुप क्लासेस हैं उनको एक रेगुलर होमवर्क मिलता है, एक स्ट्रक्चर रहता है उनके आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज के बाद, वो जब घर पे आके करते हैं कुछ एक्स्ट्रा रिविजन या फिर जो भी सब्जेक्ट के ऊपर वो लोग जो भी ट्यूटर्स उनको देते हैं वर्क देते हैं, तो आई थिंक डेफिनेटली फर्क तो दिखता है ग्रेड्स में और उनकी इम्प्रूवमेंट दिखती है। एंड आई विल ऑलवेज से कि हाँ, अगर ट्यूटर बहुत ही अच्छे हैं जो भी हमें मिल जाते हैं, 100% बच्चों में फर्क तो दिखता है।
मोहन ढल ऑस्ट्रेलियाई ट्यूटरिंग एसोसिएशन के सीईओ हैं और इस क्षेत्र से लगभग 2 दशकों से जुड़े हैं। वे बताते हैं।
So Mohan, can you provide insights to the size of the private tutoring market in Australia? And what is the proportion of the Indian community as consumers within this market?
So the size of the tutoring market in Australia is around about between 800 million and $1.2 billion nationally. And Indian students and Indian families are large consumers of private tutoring. They love education and invest in it. And that means one in three or one in four families on average are consumers of tutoring products. So the market is made up of different groups of children, those who want to excel and do the best they can in terms of schooling and then university entrance later, those who identified by NAPLAN and other expert evidence require some sort of remediation to catch up, and then those who have special needs that are being better understood by schools and parents, such as those on the autism spectrum, people with ADD or ADHD, people with students with dyslexia, etc. So as we understand learning more, people also turn to tutoring to supplement confidence and boost confidence by using tutors who understand special learning needs as well.
Mohan, how do you view the significance of private tutoring within the Indian community?
Yeah, so Indian families and Indian culture has always valued education, always valued formal education through schooling and university. And you know, there are many eminent Indian scholars in all fields of endeavor, many winning Nobel Prizes. So families have always said an investment in education is something worthwhile. They look at schools and they say schools are fine, But Indian families, being responsible families, say, what can we do to assist our children to get the best they can in the time, in the years they've got in education? Unfortunately, that also makes them vulnerable to the claims made by private tutors, and it means that they may be getting services that aren't good enough, or give them enough detail, or give them enough information to make informed choices. So it's a bit of a double-edged sword. It's valued, but they need to get a service that is respectful, insightful, gives disclosure, and is a proper academic service, not one that focuses on coaching or rote learning, which actually undermines a student confidence and learning in the long run.
Right. Mohan, how can parents identify the right tutor for their child?
The best way parents can identify the right tutor for their child is starting off with, what are the qualifications and experience of tutors? If parents feel like there's some sort of arrogance or pushing back against that, you know, their teachers, then that would not be a service that would be good to go to. You then ask what sort of disclosures are made, what sort of reports you'll get, whether you can observe what happens in classes, and whether refunds are given in the event that a child doesn't improve. Now, those are very important questions. Of course, we would like them to ask if they're a member of the ATA, the Tutoring Association, because we have a code of conduct and we badge our best practice and are supported by government. Now, if a tutor says, no, I'm not a member of the ATA, then the parent should say, well, what is it about the code of conduct that you can't meet or don't like? So these sorts of questions, asking properly about what is offered, how it relates to curriculum, is there reporting, are there refunds, etc., and are there members of the ATA? If any of those aren't satisfactorily answered, I'd go somewhere else.
Thank you very much, Mohan, for your time today and explaining us these key issues about private tutoring.